आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
कोई कसर न छोड़े, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर बोले मोदी, हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 स्थानों पर हमले किए हैं, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों और 1 CRPF जवान की मौत हो गई। वहीं 7 सुरक्षाकर्मी और कई अन्य घायल हो गए। गुरुवार की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी स्थिति की पूरी जानकारी दी गई। उन्हें आतंकवाद विरोधी प्रयासों से भी अवगत कराया गया। बैठक के दौरान मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं की पूरी तरह से तैनाती का आग्रह किया। उन्होंने सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए विभिन्न जिलों के वन क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एक महिला ने 2 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर जम्मू के बाहरी इलाके नरवाल बाईपास क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। पिछले 4 दिन में आतंकवादियों ने रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 जगहों पर हमले किए, जिनमें 9 तीर्थयात्रियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के एक जवान की मौत हो गई तथा 7 सुरक्षाकर्मी समेत कई अन्य घायल हो गए। कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जयपुर में हिंदू परिवारों ने क्यों लगाए पलायन वाले पोस्टर, किस तरह की दिक्कत का दावा। किशनपोल ब्रह्मपुरी के बाद अब जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में हिंदू परिवारों ने पलायन के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया है। यहां कई घरों पर अचानक पलायन से बचाने की अपील वाले पोस्टर नजर आए तो सनसनी फैल गई। पोस्टर्स में कहा गया है कि गैर हिंदुओं को घर नहीं बेचें। शुरुआत में ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार करती रही पुलिस, अब जांच में जुट गई है। सर्व हिंदू समाज के नाम से लगाए गए सभी पोस्टर में हिंदी में लिखा है, सनातनियों से अपील, पलायन को रोकें। सभी सनातन भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को ना बेचें। भट्टा बस्ती थाने के प्रभारी कैलाश ने पोस्टर लगाए जाने की पुष्टि की और कहा कि लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर चिपकाए हैं और इस बारे में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने किसी तरह के विवाद होने से इनकार किया। थानाधिकारी ने बताया कि जब भी उपद्रव की कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि संपत्ति बेचना और खरीदना व्यक्तिगत मामला है, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई विवाद हो। हालांकि पोस्टर चिपकाने वाले स्थानीय लोग कई तरह की परेशानियों का दावा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपनी मर्जी से उन्होंने अपने घरों पर पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर लगाए जाने के बाद से शिवाजी नगर में मीडिया कर्मियों की आवाजाही बढ़ गई है। पत्रकारों के पहुंचने पर लोग खुलकर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। मीडिया के कैमरों को देखकर महिलाएं मुखर होकर बताने लगती हैं कि किस तरह उनके मोहल्ले में छेड़छाड़ और गुंडागर्दी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में माहौल बदल रहा है। उनका कहना है कि इलाके में कई हिंदू परिवारों ने दूसरे समुदाय के लोगों को अपने मकान बेच दिए। जिन लोगों ने इन मकानों को खरीदा है उनमें से कई उपद्रव करते हैं। एक महिला ने कहा कि गलियों में बदमाश घूमते रहते हैं और युवकों की टोली जमा हो जाती है और जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो वे झगड़ा करने लगते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, इस स्थिति के कारण हमने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपकाने का फैसला किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर गैर हिंदू को न बेचें। प्रॉपर्टी के दलाल अक्सर हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हम अपना घर बेचने में रुचि रखते हैं। कई घर बाहरी लोगों को बेच दिए गए हैं और हमारे इलाके में माहौल खराब हो गया है। दिलजीत दोसांझ कुछ दिक्कतों की वजह से छिपा रहे हैं शादी। एमी विर्क ने दिया हिंट, वह नहीं चाहते कि। दिलजीत दोसांझ की शादी को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। उनके दोस्त और करीबी हिंट कर चुके हैं कि दिलजीत शादीशुदा और एक बच्चे के पिता हैं। हालांकि वह इन खबरों पर चुप्पी साधे रहते हैं। अब सिंगर एमी विर्क ने कुछ ऐसा कहा है जिसे दिलजीत दोसांझ के शादीशुदा होने की पुष्टि माना जा रहा है। उन्होंने कुछ दिक्कतों की तरफ इशारा किया है जिनकी वजह से उनका परिवार लोगों के सामने नहीं आता। न्यूज 18 शोशा से बातचीत में एमी विर्क बोले, आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर हम दिलजीत पाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये उनका प्राइवेट मैटर है, यह उनका परिवार है। कोई वजह होगी जो वह उन्हें दुनिया से नहीं मिलवा रहे। मेरे भी एक बीवी और एक बेटी है। मैं भी नहीं चाहता कि वे पब्लिक में आएं। वे भी ऐसा नहीं चाहते। अभी वे कहीं भी घूम सकते हैं। कोई नहीं जानता कि ये एमी का परिवार है या ये दिलजीत का परिवार है। अगर लोग जानेंगे तो उनको दिक्कत होगी। एमी ने कहा, हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि न सिर्फ हमारे फैंस होते हैं बल्कि दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी से दुश्मनी हो। परिवारों को दिक्कत में नहीं डालना चाहिए। अभी वे मार्केट या कहीं भी जा सकते हैं, किसी को परवाह नहीं होती। अगर लोग जान जाएंगे तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। यह सब उनकी इच्छा पर उनकी सुरक्षा के लिए है। पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि दिलजीत दोसांझ एक इंडियन अमेरिकन लड़की से शादी कर चुके हैं। उनके एक बेटा भी है। हालांकि दिलजीत इन खबरों पर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। कुछ रोज पहले एक महिला की तस्वीर वायरल हो चुकी है जिसे दिलजीत की वाइफ बताया जा रहा था, हालांकि सारे दावे गलत थे। अब और नहीं गर्मी की मार, आ गई लू से राहत वाली खबर। यूपी बिहार में इस दिन हो सकती है मॉनसून की बारिश। देश के आधे हिस्से में मॉनसून पहुंच गया है, मगर आधे हिस्से में रहने वाली आबादी मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज काफी अलग सा है। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कुछ राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारत के उत्तरी भागों में भीषण हीटवेव की स्थिति जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 17 तारीख के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं 13 से 15 तारीख के दौरान पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, बिहार, झारखंड और झारखंड में छिटपुट जगहों पर लू चलने की संभावना बनी हुई है। अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में लू की संभावना बनी हुई है। 13 से 16 तारीख के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। 14 और 15 को उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मौसम गर्म रहने की संभावना है। 13 और 14 जून 2024 को पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात में गर्म मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। गंगानगर 46.7 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 2-3 दिनों में राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस होने और कहीं कहीं हीटवेव चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मॉनसून की स्थिति की बात करें तो सुस्त दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले लिया, जबकि भीषण गर्मी से जूझ रहे मध्य और उत्तर भारत को अब भी मानसून के पहुंचने का इंतजार है। आईएमडी ने कहा कि मानसून अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। एक अधिकारी ने कहा, बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर है और इसके वहां से आगे बढ़ने का इंतजार है। अब न्यूयॉर्क स्टेडियम का नहीं बचेगा नामोनिशान, जहां खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 मैच। न्यूयॉर्क के आइजनहावर पार्क के नसाओ में ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तैयार कराया था। ये एक अस्थाई स्टेडियम था। T20 वर्ल्ड कप 2024 के कुल 8 मैच यहां खेले जाने थे और इन सभी मैचों का आयोजन हो चुका है। एक भी मैच हाई स्कोरिंग नहीं था, फिर भी कांटे के मुकाबले हुए। हालांकि फैंस इस तरह के मैच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना पसंद नहीं करते। इसके लिए ICC की आलोचना भी हुई, क्योंकि इस स्टेडियम में 4 ड्रॉप-इन पिचों का इस्तेमाल किया गया था, जो कुछ ही महीने पहले एडिलेड से मंगवाई गई थी। ड्रॉप इन पिचों को सेट होने में 8 से 10 महीने लगते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में 8 से 10 सप्ताह भी नहीं हुए कि T20 वर्ल्ड कप के मैचों का आयोजन करना पड़ा। यही वजह रही कि इस मैदान का औसत स्कोर पहली पारी का 108 रन था। ICC ने इस स्टेडियम को बनाने के लिए करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए। ये स्टेडियम 106 दिनों में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अब इस स्टेडियम को डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि ये अस्थाई स्टेडियम था। इंडिया वर्सेस USA मैच के ठीक बाद इस स्टेडियम को डिसमेंटल करने का काम शुरू हो गया है, जो करीब 6 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। मैच के बाद ही स्टेडियम को डिसमेंटल करने के लिए बुलडोजर आ गए थे। एक तरह से कहा जाए तो अगले महीने के आखिर तक इस स्टेडियम का नामोनिशान नहीं बचेगा। फिर से वही पार्क नजर आएगा जो इसी साल जनवरी की शुरुआत में था। हालांकि यहां क्या ड्रॉप इन पिच लगी रहेंगी, इसका भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। ICC के अधिकारियों ने क्रिकबज को बताया है कि अगर नसाओ काउंटी के अधिकारी चाहते हैं कि ये पिच लगी रहे और इनकी मेंटेनेंस होता रहे तो यह लगी रह सकती है, अन्यथा इन पिचों को रिलोकेट किया जाएगा। हालांकि आउटफील्ड यहां रहेगा, इसे भी बाहर एक नर्सरी की तरह तैयार किया गया था।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।